हरिहंताणम् णमूषताणम् नमो आयिरीयाणम् णमो वचायाणम् णमो लोये स्वगताहुणम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्तु योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओङ्काराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उन्नीसवीं शताब्दी के महान प्रकांड विद्वान अनुभवी ज्ञानी पुरुष परम सम्माननीय श्रीमद् कृपालु देव द्वारा रचित यह अपूर्व अवसर नामक रचना सच में हमारे जीवन के अपूर्व अवसर का बोध कराती है। हमने यदि अपने जीवन की अपूर्वता को नहीं पहचाना तो फिर ये अपूर्व अवसर ऐसी स्थिति में बदल जाएगा जो अनंत बार हमने दुख भोगे हैं। नहीं पहचाना हमने, नहीं पहचान पा रहे हैं, ये अवसर मिल गया है, ये बहुत दुर्लभ है, सहज नहीं है और सबको नसीब नहीं होता। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो हमें ऐसा अवसर मिल गया है। जिनवाणी की चर्चा कान में पड़ना मात्र दुर्लभ है, जिनवाणी की चर्चा कान में पड़ना तो महादुर्लभ है ही, कान मिलना ही महादुर्लभ है। कान मिलना माने पंचेंद्रिय होना, अनंत बार एक इंद्रियों में जन्म मरण करे, अनंत काल तक एक इंद्रियों में जन्म मरण करे तो कहीं चांस मिलता है दो इंद्रिय होने का, लट अधिक होने का, फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय होने का चांस मिलना, वहां से चार इंद्रिय होने का चांस मिलना, पंच इंद्रिय होने का चांस मिलना, उसमें भी कान मिलना है, सुनने समझने विचार करने का अवसर होना, जैन कुल मिलना। नहीं तो देखो आप सब, अभी जाकर के देखो आप, ऐसा लगता है सब जगह सब मांसाहारी लोग दिखते हैं, उनको कुछ उसमें हीन भावना ही नहीं आती, उनको कुछ लगता ही नहीं है। मछलियों को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खाते खिलाते हैं जैसे समझ लिया ककड़ी खा रहे हो। तो बहुत दुर्लभता से ये चीज मिल गई है, कह रहे बहुत अपूर्व अवसर मिल गया है और ये अपूर्व अवसर प्राप्त करके हमें इसे किसी भी रूप में खो देना ये समझदारी का काम नहीं है। हमने यदि इस अवसर को खो दिया तो फिर ये अवसर दोबारा मिलने में अनंत काल लग जाएगा, अनंत काल। एक बार यदि ये चला गया तो फिर बहुत लंबे काल के बाद में दोबारा मिलता है। वैसी ही दशा है कि किसी किले के 84 लाख दरवाजे हों, कितने 84 लाख दरवाजे चारों तरफ राउंड में, और उनमें से एक दरवाजा खुला हो अंदर किले में जाने के लिए, और कोई अंधा व्यक्ति एक एक दरवाजे पर हाथ लगा करके देखे कौन सा दरवाजा खुला है, जहाँ खुला होगा वहाँ से अंदर चला जाऊंगा। 84 लाख दरवाजों में से 83,99,999 दरवाजों पर टच करता रहा और बंद मिले, और जैसे ही वो 84 लाख वाला लास्ट दरवाजा आया, हाथ में थोड़ा दर्द था तो थोड़ा आगे बढ़ गया और हाथ लगाना चालू किया और कंटिन्यू 84 लाख में घूमता रहा। बोलो आप, ऐसी दशा कहीं हमारी तो नहीं है कि ये चांस मिल गया, ये इस दरवाजे पर आ गए हम, जिस दरवाजे पर आकर के हमारा दुर्भाग्य सद्भाग्य में बदल सकता है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कट सकते हैं, अनंत जन्मों में जो काम नहीं किया हमने भूतकाल में वो काम यहाँ किया जा सकता है, वो भेद विज्ञान यहाँ हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब हमें ये बात समझ में आए कि यह तन संयम के लिए मिला है, यह तन भोगों के लिए नहीं मिला, यह तन भोग के त्याग के लिए मिला है। जैन धर्म की विशेषता ही यही है कि जैन धर्म भोग की नहीं त्याग की चर्चा करता है, राग की नहीं वैराग्य की चर्चा करता है, विषयों की नहीं संयम की चर्चा करता है। ये पूरी वही चर्चा की है, लेकिन ये संयम के पहले, विरक्ति के पहले, त्याग के पहले इन्होंने एक लाइन में कह दिया दर्श मोह के क्षय से, उसके बाद आपका सारा त्याग, आपका पूरा संयम, आपका सभी वैराग्य, आपका चारित्र, ये सब तभी कार्यकारी होगा जब दर्शन मोहनी का क्षय हो गया होगा। माने जब मिथ्यात्म चला जाए, माने जब उल्टी मान्यता चली जाए, मान्यता में उल्टापन बैठा हुआ और बाहर में आप चारित्र का पालन करने की चेष्टा करो, कुछ दम नहीं है उसमें। चौथे गुण स्थान से शुरुआत होगा, धर्म वहीं से स्टार्ट होगा चौथे गुण स्थान से। इसके पहले धर्म नहीं है, इसके पहले तो धर्म का भ्रम है। बाहरी आचरण कितना भी पालन करो आप, लेकिन अंदर से जब तक सुधार नहीं हो तब तक क्या होगा। ऐसा कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि कुएं में मरी हुई बिल्ली पड़ी हो तो कितना भी पानी साफ करो वो पानी साफ नहीं होगा। बिल्ली मर गई कुएं में, अब क्या करें, पानी जहरीला आने लगा, पानी में कड़वापन आने लगा, तो गांव वालों ने क्या किया कि ये पानी खराब आ रहा है, पूरा का पूरा पानी निकाल दिया, पूरा पानी निकाल दिया। अब दूसरे दिन क्योंकि कुएं में तो अपने आप पानी आता है, तो दूसरे दिन अपने आप भर गया, तो अब तो अच्छा आएगा ना पानी, तो खराब पानी तो पूरा निकाल दिया था, अब तो पूरा नया पानी है। बिल्ली निकालनी है पहले, मरी हुई बिल्ली पड़ी है अंदर में, ये महामिथ्यात्व अंदर में बैठा हुआ है। हमने ऊपर ऊपर तो सफाई करने की चेष्टा की, लेकिन अंदर में जहाँ ये मूल में कचरा बैठा हुआ है वहाँ सफाई के बारे में विचार तक नहीं किया हमने। ये ऊपरी कचरा हटा रहे हैं हम, ऊपरी कचरा हटाया हमने पाप भाव का, ऊपर से हिंसा नहीं करी, ऊपर से झूठ नहीं बोला, चोरी करना हमारे को बहुत बुरा लगता है, हम चोरी नहीं कर सकते, हमारे मन में किसी के प्रति खोटा भाव नहीं आ सकता, परिग्रह तक से हम दूर रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भैया मिथ्यात्व गया है यानी अंदर में, बोले ये क्या होता है, ये चल रहा है। तो ये तो जब अंदर से एक बार ये जागृति आती है तो हित होता है, तो भला होता है। देखिए आप पांच छंदों के संदर्भ में अपन चर्चा कर चुके थे, मेरी उन पांचों छंदों को बिना पढ़े हुए सिर्फ एक आध मिनट के अंदर दोहराऊं तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा अपूर्व अवसर कौन से दिन आएगा जब मैं बाहर से और अपने अंतरंग से निर्ग्रंथ हो जाऊंगा, सभी संबंधों का तीक्ष्ण बंधन जहाँ छेद दिया जाएगा और मैं विचरण करूँगा महान पुरुषों के बताए हुए पंथ पर। उन्होंने जो पंथ बतलाया है वो पंथ अपने अंदर से जाता है, जब मैं उसके ऊपर विचरण करूँगा तो सारे जगत के प्रभावों से उदासीन वृत्ति हो जाएगी। ये शरीर केवल संयम ही के हेतु से मिला है, जगत में और कोई वस्तु इच्छा करने योग्य नहीं है। जिसकी तन के प्रति भी मूर्छा जब मिट जाएगी, नहीं हुए तन के प्रति भी मूर्छा, तो दर्शन मोह का क्षय होता है और उससे सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। उपजा है बोध जो, फिर सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तन से भिन्न, देह से भिन्न, शरीर से भिन्न, मात्र चेतन का ज्ञान होगा और फिर अल्प काल में धीरे धीरे चारित्र मोह का भी अभाव हो जाएगा। इस तरह से जब अपने ही स्वरूप में ध्यान होता है, जब अपने ही स्वरूप में वर्तन होता है, मन वचन काया इन तीनों योगों के माध्यम से अपने ही आत्मा में लीनता होती है, तो जब तक मुख्य रूप से देह पर्यंत यह चलता रहता है, कितने भी उपसर्ग हो, कितने भी परिचय हो, महाभयंकर भयकारी होवे, लेकिन फिर भी इस स्थिरता का अंत न होवेगा। आत्म स्वरूप में जो स्थिरता हुई है उस स्थिरता का अंत नहीं होगा उत्सर्ग और परिश्रमों के काल में। संयम ही के लिए योग की वृत्ति हो, योगों की वृत्ति संयम के लिए हो और निज आश्रय के अनुसार प्रवृत्ति, जिन देव ने कही है, जिन आज्ञा के अनुसार निज आश्रय से योग की प्रवृत्ति ही वास्तव में संयम है। संयम की कितनी गजब परिभाषा बतलाइए, बोलो। निज आश्रय से जिन आज्ञा के अनुसार योग की प्रवृत्ति ही संयम है, उसका नाम संयम है। हम संयम किसे समझते हैं? योगों की चंचलता के रुकने को संयम समझते हैं, मन वचन काय के इधर उधर दौड़ने के रुकने को संयम समझते हैं। ये कह रहे हैं निज आश्रय के बिना संयम नहीं होता। एक तो निज का आश्रय और एक जिन आज्ञा के अनुसार। हम समझते हैं, हम सब समझते हैं धर्म क्या होता है। आज के समय में यदि कहीं किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछ लो जिसने धर्म आदि कभी न पढ़ा हो, वो व्यक्ति भी ये कहता है मुझे सब पता है धर्म क्या होता है। आज दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा समझता है और ये भी मानता है कि मैं सब समझता हूँ धर्म क्या है। मानवता को धर्म समझता है, सामान्य सदाचार को धर्म समझता है। अपने जीवन में यदि उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया हो तो समझता है मैंने धर्म किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया। कभी कभी तो बोलता भी है ऐसा, जब किसी पाप कर्म का उदय आता है कहते हैं मैंने क्या किया। पंडित जी सच कहता हूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है लेकिन मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा बोलता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का अहित नहीं सोचा, सोचा तक नहीं, हमेशा सबका भला ही किया है मैंने, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया में हमने ऐसे वाक्य कई लोगों से सुने हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, निज आश्रय के बिना योगों की प्रवृत्ति रुकती नहीं, निज आश्रय के बिना संयम होता नहीं। अब ये जो योगों की प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति भी जब क्षण क्षण घटती जाएगी और अंत में अपने स्वरूप में ही लीन हो जाऊंगा, वो पूर्ण संयम होगा। आप देखिए आगे क्या कहते हैं, पंच विषय में राग द्वेष कुछ हो नहीं, छह नंबर का छंद है। पंच विषय में राग द्वेष विरहितता और पंच प्रमादे न मणे मन नो क्षोभ जो, और जो पांच प्रकार के जो प्रमाद हैं उनमें क्षोभ मात्र भी ना हो मन को, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वध विचरव उदयाधीन पण वीत लोभ जो। कषायों के अभाव की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे गुणस्थान चढ़ने की चर्चा कर रहे हैं, गुणस्थान छठवे सातवे तक आ गए, चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का अभाव हुआ था, आंशिक व्रतों का धारण हुआ तो पांचवा गुणस्थान हो गया और पूर्ण संयम अंगीकार हुआ तो गुणस्थान छठवा सातवा हो गया। अब धीरे धीरे कषायों के अभाव के लिए आगे के छंद लिखे हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में भी राग द्वेष नहीं हो, पंच इंद्रिय के विषय उनमें राग द्वेष नहीं हो तो पंच इंद्रिय के विषय होते हैं क्या, यानी कि जीवन में होते हैं, कैसे होते हैं? कहीं आहार के लिए गए तो रसनेन्द्रिय का विषय माने भोजन ग्रहण किया ना, वो रसनेन्द्रिय के विषय में मस्त नहीं होते। हमारी जैसे रसनेन्द्रिय का विषय है उनको आसक्ति कर नहीं होता, लेकिन भोजन तो ग्रहण करते हैं, आसन तो होता है, विश्राम तो करते हैं, कहीं अनुकूलता है तो कहीं प्रतिकूलता है, कभी राजमहलों में जाते हैं और कभी शमशान में रहते हैं, कभी जंगलों में रहते हैं। कि सब राजमहल में भी जाते हैं त्यागी लोग मुनिराज लोग, कि हाँ हाँ आहार के लिए। राजा श्रेयांश के यहाँ ऋषभ देव का आहार हुआ था इक्षुरस का, जाते हैं लेकिन उससे भी प्रभावित नहीं होते। ये अप्रभावित के लिए जबरदस्त बातें कही है यहाँ, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो लेकिन यदि परिस्थितियों से अप्रभावित रहना सीख लिया तो आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। परिस्थितियों से अप्रभावित रहना सीख लिया। कला सीखनी पड़ेगी, ये हो रहा है, घटनाएं घट रही है, उससे अप्रभावित है। देखो हमारे भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी। और दूसरा क्या गुण है भगवान का? सर्वज्ञता। माने भगवान सर्वज्ञ भी है और भगवान वीतरागी भी है। माने दो महत्वपूर्ण गुण है हमारे भगवान के, हमारे परमात्मा के, वीतरागीपना और सर्वज्ञपना। आप जानते हैं सर्वज्ञ कौन होते हैं, कैसे होते हैं सर्वज्ञ? सर्वज्ञ माने सब कुछ जान करके भी उससे अप्रभावित रहे, उसका नाम सर्वज्ञ। जान रहे हैं सब कुछ, सारा जगत जानने में आ रहा है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं। किसी को मरते हुए देख रहे हैं, कहीं भूकंप की लहर उठते हुए देख रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं परिस्थितियां कैसी हो रही है, कहीं कैसी हो रही है, ये अनेक प्रकार की ऐसी घोर प्रतिकूल परिस्थितियां आंखों से दिखाई देने पर भी विचलित नहीं होते। इसलिए अनंत भवों के अनंत माता पिता, अनंत भवों के अनंत माता पिता रोते बिलखते नरक में लड़ते मरते कटते पिटते हुए दिखाई देते हैं, दुखी होते हुए पीड़ित दिखाई देते हैं। कहीं हत्याएं हो रही है, कोई आत्महत्याएं कर रहा है, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं। इन सब को प्रत्यक्ष देखते हुए भी वे रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं करते, उनका नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ बनने की इच्छा रखने वाले उनसे ये निवेदन है कि वे अप्रभावित रहने की कला सीखें। जो व्यक्ति अप्रभावित रहना जानता है, वह व्यक्ति सर्वज्ञ होने की दिशा में अपना कदम बढ़ाता है, भगवान बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। माने सर्वज्ञ बनने का मार्ग अप्रभावित रहने का मार्ग, यहाँ तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इन्होंने कर दिया, ये हमसे देखा पड़ लिया, हमसे देखा नहीं जाता, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। आजकल के बच्चे तो बस, हम तो देख नहीं सकते, हम उनके साथ में जाकर के परचेजिंग नहीं कर सकते। आपके यहाँ तो फिक्स रेट ही होती होगी, बार्गेनिंग तो नहीं होती है, हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा चलता ही नहीं है। वहाँ तो आप यदि किसी दुकान पर चढ़े हैं, जो दाम बतलाए हैं, आप बिना पूछे यदि उतने ही दाम दे आए तो आप मूर्ख कहलाएंगे। बहुत कम कोई गिनी चुनी दुकानें होती है जो एक दाम की होती है, बाकी तो सब जगह पर बार्गेनिंग होती है। हमसे ये देखा नहीं जाता कि दुकान पर चढ़ते हैं आजकल के बच्चे, सामान पैक कराते हैं और दाम पूछ करके दे करके आ जाते हैं। हमसे देखा नहीं जाता है कैसे लुटाते हैं पानी की तरह। हमसे देखा नहीं जाता इन बहुओं को जो ये काम करती है किचन में, कितना ढोलती है, कितना खराब करती है, कितना घी तो ऐसे बहाती है जैसे पानी बहा रही हूँ। हमसे नहीं देखा जाता, कि तुमसे नहीं देखा जाता, तुम्हें पता नहीं है सर्वज्ञ बनने पर क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या क्या दिखेगा। हमसे नहीं देखा जाता, ये हड्डियों के वार्ड नहीं देखे जाते हैं। एक दिन हमारे को कोई समझ लो इंडिया के किसी कसाई मोहल्ले से हमारे को गुजरना पड़े और वहाँ कटते हुए देखे, हम जीवों को ऐसे चंगे हुए देखे, शाम का भोजन नहीं कर पाते हैं। मुझसे नहीं देखा जाता, हे भगवान क्या नहीं देखा जाता तुझसे, सहज नहीं रह सकता ज्ञाता दृष्टा भाव से। जो हो रहा है उसे सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देख, ये भगवान बनने की कला है। भगवान भी यही तो करते हैं, वीतराग भाव से देखते हैं। अत्यंत सहज वृत्ति, उदासीन भाव, पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति उदासीन भाव, प्रमाद नहीं हो, मन में क्षोभ नहीं हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं हो, साधकों के प्रति, साधकों के जीवन में, कभी भी उनकी लाइफ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप रंच मात्र भी प्रतिबंध नहीं होता। क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं है, काल का प्रतिबंध नहीं है, द्रव्य से वे बंधे नहीं है। परिस्थितियों द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियां हैं सब। द्रव्य माने पदार्थ, क्षेत्र माने जगह है, काल माने दिन, भाव माने परिणाम, किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं है वो। जब जैसा परिणाम आया, जब किसी द्रव्य से बंधे नहीं है, ये चीज चाहिए ऐसा उनको कोई अपेक्षा आग्रह नहीं है, ये जगह बहुत अच्छी है और ये जगह अच्छी नहीं है, ऐसा क्षेत्र के प्रति भी आग्रह नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, काल के बारे में भी नहीं है, कौन सा काल है, कौन सा मुहूर्त है, यानी धर्मात्मा मुहूर्त देख देख करके काम नहीं करते, काम ही ऐसा करते हैं कि दुनिया उसे अच्छा मुहूर्त कहने लगे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, महावीर भगवान का जन्म दिवस, महावीर जयंती, अच्छा मुहूर्त है कि नहीं?
अरे साहब क्या बात कर रहे
हो, अक्षय तृतीया आखा तीज पर तो कितने विवाह होते हैं, दुनिया ये कहती है अबूज मुहूर्त है, बिना पूछे बिना जाने बोलते हैं ऐसा। आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, शुभ दिन है, जो भी काम करो वो शुभ करो। मैं कहता हूँ वो दिन शुभ कैसे हो गया, ऋषभ देव ने वो तिथि देखकर, समय देखकर के आहार लिया होगा। अरे इतना अच्छा काम हुआ कि इतने समय से आहार नहीं मिला था, जिस दिन आहार हो गया वो काम शुभ हुआ तो तिथि भी शुभ हो गई। काम अच्छा होता है तो तारीख शुभ हो जाती है, काम अच्छा होता है तो मुहूर्त शुभ हो जाता है, वो मुहूर्त अच्छा है जिस मुहूर्त में अच्छा काम किया गया। ये व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त तलाशता है, हम कहते हैं मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जिस क्षण हमारे जीवन में भेद विज्ञान होगा वो मुहूर्त हमारे लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होगा, सबसे अच्छा मुहूर्त होगा, इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता है। काल की बात कह दी, इसी तरह से भावों की बात करते हैं। वीत लोभ हो विचरू उदयाधीन, जब लोभ भी क्षय हो जाए और उदयाधीन में विचरण करूं। आगे देखो क्रोध मान माया लोक चारों कषायों के संदर्भ में बहुत सुंदर बातें कही है। क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभाव का, क्रोध के प्रति क्रोध, पर के प्रति क्रोध तो आज तक अनंत बार किया, लेकिन क्रोध के प्रति क्रोध हो जावे। मान भाव प्रति दीन भाव में मान, जब मान भाव के प्रति कैसा हो, मान प्रत्यय तो दीन प्रणानु मान, जो मान भाव यदि होवे तो दीन भाव से उसे जीते हैं, और माया यदि होवे तो साक्षी भाव होवे, और लोभ यदि हो तो निर्लोभ के समान वर्तूं। क्या गजब कह रहे हैं, बहु उपसर्ग करें तो भी क्रोध नहीं। यहाँ तो हमारे को कोई अपशब्द कह दे रहे तो आग बबूला हो जाते हैं। एक शब्द यदि किसी का हमारी जवान के विपरीत निकल गया, एक शब्द, तो पता लगता है हम कितने कषायी हैं।
वर्णवाद,
हमारे लिए यदि किसी ने एक शब्द भी कुछ कह दिया, देखो हमेशा प्रशंसा करते हैं हम, ये कहते हैं कभी कभी, अरे साहब हमारा घर तो बहुत अच्छा है। मैं क्या बताऊं आपको, हमारा घर इतना अच्छा है, सब आज्ञाकारी हैं, बच्चे बहुएं सब इतने आज्ञाकारी हैं। महेंद्र भाई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बच्चों को कुछ कहा हो और उन्होंने मना किया हो, ना तक नहीं निकला, उस तक नहीं निकलता है, जो कहते हैं वो करते हैं। इससे अच्छा परिवार मिलेगा आपको, इससे अच्छे संस्कारित बच्चे मिलेंगे। मैं कहता हूँ एक बार के लिए मेरे हिसाब से सोचो, मेरे हिसाब से देखो जरा, आज तक आपने उनको जो कुछ भी कहा है, जो भी बातें आपके मुख से निकली है, उनके विचार उस बात से मिलते हैं, इसलिए वो उस बात को मानते हैं। आप एक वाक्य उनके प्रतिकूल कह करके देखो, जो वे विचार करते हैं, जो वे चाहते हैं, उसके विपरीत एक वाक्य कह करके देखो, आपको पता लगेगा वे कितने शांत हैं, कितने सरल हैं, तुरंत सामने जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अनुभव करते हैं हम। अरे जिसके मन माफिक बात कर रहे हो वो व्यक्ति आपकी बात क्यों नहीं मानेगा, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध बोल करके तो देखो, उसे जाना है पिक्चर देखने के लिए और आप इतना सा कह दो नहीं बेटा अभी नहीं, आप तो मना ही करते हो, इसमें क्या हो गया, ये मैंने कोई गलत बात कह दी है कि पिक्चर देखने के लिए तो जा रहा हूँ, सब दोस्त जा रहे हैं साथ में, दो बात आपको सुनने को मिल जाएगी। वो पूछता है आपसे, पिताजी पिक्चर देखने चले जाओ? हाँ बेटा चले जाओ। आपको लगता है कितने आज्ञाकारी है, कितने क्या आज्ञाकारी है बताओ मेरे को। जैसा उन्होंने कहा, जैसा उनका मन था, आपने उसकी वैसी ही स्वीकृति दी, तो आपके हिसाब से चलता हुआ दिखता है। अंदर में सबके कषायें भरी हुई है, ये उपसर्ग करे, प्रतिकूलता दिखाई देवे और फिर भी क्रोध नहीं आवे, और बंदे चक्री तो भी मान न हुए। चक्रवर्ती आकर के चरणों में मुकुट रखे, मुकुट ऐसे आकर के रखे चरणों में, तो भी अभिमान नहीं हो। औरों को दिखाई देगा कौन आया है, तुम्हें पता है राष्ट्रपति आया था आज? कई बार जितने 40 साल हो गए हमारे को संयम लिए हुए, और जितने राष्ट्रपति बने हैं आज तक, सब आते हैं हमारे पास में हमसे आशीर्वाद लेने के लिए। हम भी कुछ हैं आखिर हस्ती। चक्रवर्ती आकर के वंदन करे तो भी हृदय में मान भावना, मैं बड़ा नहीं हूँ, दुनिया के सब जीव समान हैं, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। ये वृत्ति जब अंदर से आती है तो बड़ा अपूर्व जीवन हो जाता है। सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कहीं भेदभाव दिखाई नहीं देता, कहीं राग नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है, कहीं विकार भाव नहीं है। देह चले जाए, माया नहीं रूम में, रूम में माने रंच मात्र भी विपरीत प्रवृत्ति नहीं है। देह जाए तो जाए, और लोभ नहीं है प्रबल सिद्धि निदान जब। निदान जानते हैं आप, प्रबल सिद्धि होने के लिए रंच मात्र भी लोभ नहीं करते। अरे अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाए, लेकिन वो रिद्धियां प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उन रिद्धियों पर गर्व नहीं करते, उन रिद्धियों को आप तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं। शतावधानी थे, जब तक भेद विज्ञान नहीं था, अनेक प्रकार के रिद्धियों के प्रयोग करते थे, रिद्धियों के प्रयोग दिखाते थे जगत के जीवों को। आंखें बंद करते थे, आंखों पर पट्टी बांधते थे, ऐसे बता देते थे ये क्या है।
शास्त्र का
बोलो श्रीमत जी, क्या गजब स्वरूप होगा उनका, देख करके आश्चर्य लगता है हमारे को, हमारे आर्जव भी कर देता है। आंख से पट्टी बांधकर पढ़ देगा, आपका कलर बतला देगा, क्या लिखा हुआ है वो बतला देगा। आंख से काली पट्टी बांध दो आप, करके देख लेना। ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसा हुए इतना सारी दुनिया में प्रशंसा हुए, लोग उसकी तारीफ करें, छोड़ दिया उन्होंने। फिर पहले दिखाते थे ऐसे खेल, हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े रहते थे, हजारों लोग, लोग शो चलते थे। जैसे ही ज्ञान हुआ, कुछ दम नहीं है इसमें, क्षयोक्षम ज्ञान है, ये अभिमान करने योग्य नहीं है। ये ज्ञान का अभिमान ज्ञान को शून्य कर देगा, ज्ञान का क्षयोक्षम है, शून्य कर देगा ज्ञान को। जिस चीज का अभिमान किया वो चीज हाथ से जाती रहेगी, ये समझ लो आप। जिस चीज का अभिमान किया, आपने अपनी सुंदरता का अभिमान किया, आपकी सुंदरता देखना थोड़े समय में, आपने अपने धन का अभिमान किया, ये धन थोड़े समय में, आपने अपने ज्ञान का मद किया, वो ज्ञान चला जाएगा, आपने अपनी प्रतिष्ठा का मद किया, वो प्रतिष्ठा ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं, लोग समझने लगेंगे। आपने प्रतिष्ठा का अभिमान किया ना, लोगों को दिखने लगता है कि ये प्रतिष्ठा क्या रहा है, तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, जगत के और लोगों को छोटा देख करके तो एक बात को भूल गया है कि वो लोग भी तुझे उतना ही छोटा देख रहे हैं। ये अभिमान के त्याग की बात कहता हूँ, बड़ा जबरदस्त है ये स्वरूप। कैसे जीतते हैं वो, चक्रवर्ती आकर के वंदन करे, हमारे को महिमा नहीं आती उसकी। ओ ये एक समान आशीर्वाद, राजा श्रेणिक आकर के चरणों में झुके या चेलना आकर के चरणों में झुके, दोनों को एक समान आशीर्वाद। ये कैसी विचारता होती है, ये कैसी सहज वृत्ति होती है ज्ञानियों के जीवन में। क्या ऐसी सहजता की भावना भाते हैं हम, लगता है ऐसा? अरे अंदर में अतिंद्रिय आनंद रस को चखने वाले बाहर के कष्टों की परवाह नहीं करते, बाहर तकलीफ के बारे में विकल्प नहीं करते, उन्हें विचार भी नहीं आता। अंदर में आनंद आया है, ऐसा आनंद आया है कि नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त करने की भावना है या नहीं? सच में अभी तो सच्ची लगन नहीं है, अंदर से सच्ची चाह नहीं है, इच्छा नहीं है अंदर से, भी चाहता ही नहीं है, इसकी भावना ही नहीं है कि ऐसा काम हो। एक पानी वाला, पानी पिलाने वाला लड़का, पानी की बोतल बेचने वाला लड़का ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में सबको पानी 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 बोतल बेच रहा था। एक सेठ जी ने कहा कि क्यों भैया, कितने की है? 12 रुपए की है सेठ जी। तो बोले 10 रुपए में नहीं देगा? ये मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, नीचे उतरा। बराबर में बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था कि यार ये क्या बात है। जब स्टेशन पे उतरे तो उस व्यक्ति ने जो बराबर में बैठा था, देख रहा था, उसने उस लड़के को बुलाया कि यार क्या बात है, तुम्हारी एक अजीब सी मुस्कान देखी मैंने वहाँ, क्या क्या बात है? सेठ जी ने 12 रुपए की जगह 10 रुपए तो कहा और तुम मुस्कुरा के निकल गए कि नहीं नहीं सेठ जी को प्यास ही नहीं लगी थी। कि क्या बात कर रहे हो आप, कि जिसे प्यास लगती है वो 2 रुपए नहीं देखता, वो बार्गेनिंग नहीं करता। सेठ जी तो ऐसे ही मेरा मन लेने के लिए पूछ रहे थे 10 में देगा क्या। इतना बड़ा सेठ पानी पीने के लिए 2 रुपए की बात करता है? भाई साहब जिसे प्यास लगती है वो व्यक्ति मोल भाव करने में नहीं उलझता, फिर तो जितने में मिलती है बोतल उतने में लेता है। 10 रुपए 12 रुपए में नहीं, $5 में भी मिले तो पानी की बोतल खरीदता है। प्यास तो लगे, हमें ये प्यास लगी है कि तत्व ज्ञान की, कहते तो हैं हम हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। तो हम बातें करते हैं सिर्फ अंदर से हृदय से ये प्यास लगी नहीं हमारे को, ये प्यास जागृत ही नहीं हुई है। जिनको ये प्यास लगती है उन्हें ये मिलता है, उन्हें मिले बिना नहीं रहता। सच्ची लगन, बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे। लगन मात्र की, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, पैसा नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक लगन चाहिए बस, उससे काम हो जाता है। उन्होंने क्या कहा, लोभ नहीं हो, प्रबल सिद्धि न हो, निदान न बांधा हो, और बाहर में आचरण किस प्रकार का हो, नग्न भाव नग्नता हो, मुंड भाव केश लोच हो, और स्नानता हो स्नान का त्याग हो, अदंत धोवन दंत धोवन नहीं होता, आदि परम प्रसिद्ध हैं, केश रोम नख आदि अंग श्रृंगार नहीं। किसका श्रृंगार करें, बोलो किसको संभाले? शरीर को संभालते हैं तो आत्मा से ध्यान हटता है, और आत्मा को संभालते हैं तो शरीर से ध्यान हटता है, बोलो क्या करें, किसको संभालना है? यही कहते हैं कि स्थान पर किसी व्यक्ति ने पूछा इस तरह का आत्म ध्यान के संदर्भ में, तो इन्होंने कहा कि भैया कोई व्यक्ति बाजार से एक हाथ में घी का भरा हुआ बर्तन और एक हाथ में छाछ लेकर के आता हो और थोड़ी सी ठोकर लगे, झटका लगे, तो कौन से बर्तन को संभालेगा? घी का बर्तन संभालेगा। क्या दुनिया में तो सब ऐसे होशियार हैं, लेकिन ये जो शरीर छाछ के समान है जिसमें से मूल तत्व निकल गया है और वो चैतन्य तत्व अंदर में बैठा हुआ जो घी के समान है उसे नहीं संभालता और तन की संभाल में अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। अदंत दंत माने दांत, टीथ, अदंत धोवन, अधोवन धोते नहीं, माने पेस्ट नहीं करते, मंजन नहीं करते, अदंत धोवन दांत नहीं धोते, यही शब्द है गुजराती में भी, क्या शब्द है? अदंत धोवन ही है ना, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, केश के श्रृंगार नहीं, बाल नहीं बनाते, रोम आंखें नख नाखून कुछ काटते नहीं है, जो जैसा हो श्रृंगार नहीं करते, द्रव्य भाव संयम में निर्ग्रंथ सिद्ध जो। ऐसा अवसर कब आएगा हमारे, ऐसा जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा जब ऐसा संयम होगा हमारे जीवन में, ऐसा अवसर कब आएगा जब नग्नता होगी, केशनोच होगा हमारे जीवन में, ऐसा अवसर कब आएगा जब परिग्रह का त्याग होगा, जब विषयों से छूटेंगे, जब संयम भाव होगा, जब त्याग होगा, जब वैराग्य होगा, वो अवसर कब आएगा? वो अवसर कब आएगा जब अतिंद्रिय आनंद का पान होगा। लगता है कभी ऐसा, आम रस जैसे पीते हैं ऐसे आत्मरस जब पिएंगे वो अवसर कब आएगा? आत्मरस को पीने के अवसर की बात करते हैं। शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता, वाव, एक उपसर्ग करने वाला, एक उपसर्ग दूर करने वाले, अत्यंत सामने भाव, फर्क पड़ता है कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शत्रुओं को भी शत्रु नहीं समझते, विरोधियों को विरोधी नहीं समझते, हमें ऐसा लगता है कि अरे वो क्या विचार क्या करते होंगे, आपने कभी सोचा वो क्या विचार करते होंगे उस शत्रु को देख करके, उसके उसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो शत्रु दिखाई दे रहा है ये मेरा शत्रु है ही नहीं, इससे नाराज क्यों हुए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मुकुंद भाई, हम किसी होटल में गए, खाना ऑर्डर किया, भोजन आया हमारे पास में, और वहाँ भोजन आया है वो भोजन आपको पसंद नहीं आया, बेकार है, स्वाद अच्छा नहीं है, तो आप वेटर पर चिल्लाते, वेटर पे मत चिल्लाना, वेटर पे गुस्सा भी मत करना, और वेटर को जो टिप देनी है उसको भी मत काटना, क्योंकि बेचारे का कोई दोष नहीं है, उसने भोजन बनाया नहीं है, उसने तो भोजन परोसा है, सही हुआ है? ऐसे ही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, भैया आपके सामने जो ये प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति तो वेटर के समान है, असली बनाने वाला तो आपके पाप कर्म का उदय है, समझ में आई बात? ये तो परोस रहा है, ये तो सामने वाला व्यक्ति अपशब्द कर रहा है तो परोस रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि हमारी नहीं सुनता है, हमारी नहीं मान रहा है, हमारे को गाली दे रहा है, हमारे निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, ये तो वेटर है, इसकी क्या गलती है? ये जो सर्कमस्टांस जो बने हैं ये सब किसने बनाए हैं? कि अंदर तेरे पाप कर्म के उदय ने ये परिस्थितियां बनाई है, ये क्रिएट किए। सुधार करना हो तो अंदर सुधार करना, बाहर में अपमान करने वालों के प्रति समभाव रखना, ये उपाय है। क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, सोचने का नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया उनका, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं हम। एक व्यक्ति रोड से निकला, तालाब किनारे से निकला और नाक मुंह सिकोड़ता हुआ निकला, और दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ निकला, जिसने दृष्टि में कीचड़ देखा उसने नाक मुंह सिकोड़ा, और जिसने दृष्टि में वही खिला हुआ कमल देखा उसका चेहरा खिल गया। आपकी दृष्टि में क्या दिखता है, कीचड़ दिखता है कि कमल दिखता है? एक ही जगह पर है, दोनों है वही, कीचड़ भी वही है और कमल भी वही है, आप कीचड़ देख रहे हैं या आप कमल देख रहे हैं? कमल देखने वाले मुस्कुराते हैं और कीचड़ देखने वाले, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये नाला है, जिसने ऐसा कर दिया इसके साथ तो मैं बैठ ही नहीं सकता, इसको तो जब देखो तो तुम कीचड़ देखते हो, तुम गंदगी देखते हो, दुखी रहोगे। अच्छा है, देखो फूल देखो, लेकिन लगता है मुझे ऐसा, मैंने एक दिन वाक्य कहा था कि आपको यदि अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा, अपने उठावने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जितने लोग आते हैं वो सब आपकी तारीफ करते हैं, वो सब आपका गुणगान करते हैं, वो सब आपकी चर्चा करते हैं, ऐसे थे वैसे थे, नहीं अच्छा काम करते थे। जीवन भर विरोधी व्यक्ति भी आएगा, दुश्मन भी आएगा, तो तारीफ भी करके जाएगा। वही जगह एक ऐसी है, अब आप देख लीजिए, तो उससे पहले तो चांस कम है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां जब भी बने तो इन ज्ञानियों से शिक्षा ले लें। ये क्या सिखा रहे हैं हमारे को, ये जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जीने की कला सिखा रहे हैं, प्रसन्न रहने की कला सिखा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या कला होगी। कितनी गजब बात कही इन्होंने, क्या शब्द दिए हैं देखो आप, शत्रु मित्र के प्रति वर्ते समदर्शिता, शत्रु और मित्र के प्रति समदर्शिता का भाव जागृत हो, शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव, जो मान और अपमान में भी जो अपने स्वभाव में वर्तते हो, जीवित के मरने नहीं न्यूनाधिकता, क्या भव मोक्षेपण शुद्ध वर्ते समभाव, जो जन्म मरण में कोई अधिकता नहीं, संभाव लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। कैसा लगता है अपने को, जीने की भी इच्छा नहीं है और मरने की भी इच्छा नहीं है, अत्यंत समता भाव साम्य भाव ज्ञानियों के जीवन में बढ़ता है। देखिए आप आगे क्या कहते हैं, एकाकी विचरूंगा जब शमशान में, गिरी पर होगा बाघ सिंह संयोग, जब अडोल आसन और न मन में क्षोभ हो, जानू पाया परम मित्र संयोग, जब एकाकी विचरण करूं शमशान में, अकेले शमशान में जाए तो डर लगता है, फिर शमशान ही नहीं जंगल में, पर्वतों पर, गिरी कंदराओं में, जहाँ बाघ का संयोग हो, जहाँ सिंह का संयोग हो, ऐसे स्थानों पर मैं जाकर के बैठूंगा अडोल आसन लगा करके, वो अवसर कब आएगा, अपूर्व अवसर, ऐसा इस अवसर को अपूर्व अवसर कह रहे हैं। ये कहते गाड़ी कब आएगी, तो अपूर्व अवसर है, ये कहते अच्छी सुविधाएं कब मिलेगी, तो अपूर्व अवसर है, ये कह रहे हैं जंगल कब मिलेगा, जो अपूर्व अवसर है, एकांतवास कब होगा, वो अपूर्व अवसर है, शेर चीतों का सामना होगा और मैं मन में रंच मात्र भी क्षोभ न करता हुआ अडोल आसन लगा करके बैठूंगा, ये अपूर्व अवसर है, तब मैं जानूंगा कि परम मित्र का संयोग हो गया है, शेर चीते सामने आ जाए तो समझूंगा परम मित्र का संयोग हो गया है। माने वही गाली देने वाले परम मित्र हैं, ये समझ लो आप, वही कबीरदास जी की पंक्तियां, निंदक नेरे राखिए, निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखिए, सुधार देंगे आपको, मैं बहुत उपकार मानता हूँ अपने निंदा करने वालों का, जिनके निंदा के वचन सुनकर मैं प्रतिपल निखरता जाता हूँ, जिनकी आलोचना को सुनकर मैं अपने आप को संभालता हूँ, मैं स्वयं संभलता हूँ, मैं उपकार मानता हूँ अपने विरोधियों का, ये विरोधी ना होते तो शायद मेरे ये दोष निकल नहीं पाते, मेरे दोषों को चुन चुन करके निकालने में यदि कोई समर्थ है तो मेरे विरोधी ही समर्थ हैं, इसलिए वे विरोधी मेरे विरोधी नहीं मेरे उपकारी हुआ करते हैं। किसको उपकारी मानते हैं, ऐसे उपकारी मानते हैं, क्या हो गई ये दृष्टि, बोलो आप, घोर तपश्चर्या में तन संताप नहीं, सब कर रहे हैं, एकांत में खड़े हुए हैं, एक पैर पर खड़े हुए हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हैं, ध्यान मग्न है, विचलित नहीं हो रहे हैं। सर्दी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी के दिनों में पर्वत के शिखर पर, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे, और बरसात के दिनों में वृक्ष के नीचे। सब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। ठंड के समय में आप नदी नालों के किनारे बैठ करके देखो, आप गर्मियों के दिनों में कोई पर्वत पर नहीं चढ़ता। बरसात के समय में तो अच्छा है ऐसा पेड़ के नीचे कि नहीं, मौसम बरसात का है, बरसात आ रही है, बरसात के चले जाने के बाद में भी कई घंटों तक टप 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 बदन पे टपकता रहता है। ऐसी परिस्थितियों को वे स्वीकार करते हैं। घोर तपश्चर्या में शरीर के प्रति संताप नहीं हो, सरस आसन में भी हो नहीं प्रसन्न मन। आज तो भोजन बहुत अच्छा मिला है, अरे भोजन के लिए त्याग किया था क्या, भोजन के लिए घर छोड़ा था क्या? लोग करते हैं ऐसा भी, दुनिया में दिखते हैं। हमारी कहावत चलती है ऐसी, मून मुड़ाए तीन गुण सड़की मिट गई खाज, खाने को लाडू मिले लोग कहे महाराज। क्या ये जो किया ना, इसमें तीन गुण है, तीन बेनिफिट है। एक क्या, खाने को तो मेवा मिष्ठान मिलेगा, जहाँ जाओगे चौके में आहार में सब जगह पर मिष्ठान लड्डू, खाने को लड्डू मिले। एक तो सर की खाज मिट गई, ये मुड़वा लिया हमने तो सिर की खाज मिट गई, खाने को लड्डू मिलने लगे, और लोग कह रहे हैं जय हो महाराज की, महाराज जय हो। लोग कहे महाराज कितने गुण है उसमें, ये कह रहे हैं नहीं भैया, सरस अशन, अशन माने भोजन, आसन माने भोजन, सरस हो उसके लिए भी रंच मात्र भी प्रसन्नता नहीं है। रज कर्ण हो या रिद्धि वैमानिक देवों की हो, सब में भाते पुद्गल एक स्वभाव जब वाओ। बहुत गजब दृष्टि है, पुद्गल दिखता है, पुद्गल मिट्टी दिखती है, ये कागज के टुकड़े हो या हाथ में डॉलर धरे हुए हो, दोनों टुकड़े दिखते हैं कागज के, दोनों पुद्गल दिखते हैं। सोचा करिए आपने क्या हुआ यार, कैसे पुद्गल होंगे? ऐसा ही है भाई साहब, ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप से देखना, पुद्गल को पुद्गल देखने का नाम वस्तु स्वरूप से देखना है। चेतन को चेतन देखो, पुद्गल को पुद्गल देखो। तो जब सभी पुद्गल दिखाई देते हैं तो कौन से पुद्गल तो अच्छे हैं और कौन से पुद्गल बुरे हैं? कि जगत में कोई पुद्गल के परमाणु अच्छे और बुरे नहीं होते, पुद्गल तो पुद्गल होता है, परद्रव्य तो परद्रव्य होता है, परद्रव्य में अच्छे बुरेपन की कल्पना नहीं होती। हम किसी परद्रव्य को अच्छा जानते हैं और किसी परद्रव्य को बुरा जानते हैं, ये हमारी दृष्टि का दोष है। ये बहुत, इससे ज्यादा सरल शब्दों में और क्या बात कही जा सकती है? रज कर्ण और वैमानिकों की रिद्धियां, रिद्धियां प्राप्त हो जाए हमारे को, रत्न मिल जाए हमारे को, चिंतामणि रत्न भी मिल जाए तो कंकड़ पत्थर जैसे समझते हैं उसे, आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाए, रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। सब में भासे पुद्गल, सब में पुद्गल भास रहा है, एक स्वभाव जो पुद्गल दिखता है, इस स्वभाव की दृष्टि कितनी गजब होती है। कई बार सोचता हूँ ऐसा कैसा होता होगा, कैसे पुद्गल देखते होंगे उसको, और ये सच बात है, पुद्गल देखते हैं इसीलिए राग द्वेष नहीं होता। हमने उसको पुद्गल के अतिरिक्त अन्य कुछ देखने की चेष्टा की, या तो राग खड़ा होगा या द्वेष खड़ा होगा। जहाँ राग होता है वहाँ उसे चाहते हैं, जहाँ द्वेष खड़ा होता है वहाँ उसे हटाना चाहते हैं। यही हो रहा है हमारे द्वारा, कुछ पदार्थों को इकट्ठा करना और कुछ पदार्थों को दूर करना, यही चल रहा है। किसी को हटाना और किसी को सकाना, इसी में पूरा जीवन जा रहा है। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं हम, ये सब पुद्गल है, जड़ रिद्धियां है ये। अरे अनेकों रिद्धियां भी यदि हमारे जीवन में आ गई तो ये रिद्धियां हमारा क्या भला करा देने वाली है? उन रिद्धियों से आत्मा का अनुभव तो नहीं होता, उन रिद्धियों से तो जड़ प्राप्त होता है, उन रिद्धियों से तो मिट्टी प्राप्त होती है, धूल प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। ये धन धूल है, धूल सच में ये धन धूल है। अंदर से ये धन धूल लगे क्योंकि मिट्टी में ही है, पुद्गल परमाणु ही तो है, पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, थोड़े से चमकदार पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इन रत्नों में थोड़ी चमक के अलावा और कुछ नहीं है, है तो ये पाषाण है, तो ये पत्थर ही, ये पत्थर पत्थर दिखे। बोलो रज कण या रिद्धिया वैमानिक देवों की सभी में भासे पुद्गल का स्वभाव, ये पुद्गल है। ऐसे प्राप्त करूं, जय करूं चारित्र मोह पर, ये गुण स्थान चढ़ने लगे। छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों से अब ये धीरे धीरे आगे आठवें गुण स्थान में, नौवें गुण स्थान में, दसवें गुण स्थान में, बारहवें गुण स्थान में, एक क्षायिक श्रेणी पर आरूढ़ होने की बात करने लगे। ये आठवां नौवां दसवां और बारहवें गुण स्थान की दशाएं हैं, आठवां नौवां दसवां श्रेणी चढ़ रहे हैं। ऐसे प्राप्त करूं जय चारित्र मोह पर, पाऊंगा तब करण अपूर्व भाव जब, अपूर्व करण, आठवें गुण स्थान का नाम है अपूर्व करण। अपूर्व करण किसका नाम है? आठवां गुण स्थान। और क्षायिक श्रेणी पर जब आरूढ़ हो जाऊंगा, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव, फिर और देखो आप आगे, मोह स्वयंभू रमण उदधि को तैर कर, ये मोह स्वयंभू रमण समुद्र जैसा है, कोई अंत नहीं है इसका, जिस तरह स्वयंभू रमण समुद्र का कोई अंत नहीं है, यहाँ तो समुद्रों का अंत दिखता है अपने को, फ्लाइट में बैठते हैं और समुद्र पार कर जाते हैं, होता ही है ना, एक देश से दूसरे देश के में गए हम, दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, अपन समुद्र को पार कर जाते हैं फ्लाइट में बैठ करके, ऊपर से दिखते हैं अपने को ओशन। अब यहाँ ये कह रहे हैं स्वयंभू महारमण समुद्र जिसको पार नहीं किया जा सकता, आधे से ज्यादा मध्य लोक स्वयंभू रमण समुद्र है, आधे से ज्यादा मध्य लोक, इतना बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र, डबल डबल करते हुए पहुंचते हैं स्वयंभू रमण समुद्र तक, अंतिम है। स्टार्टिंग के सारे द्वीप और सारे समुद्रों को इकट्ठा कर लो और उसको दुगना कर दो, इतना है अकेला स्वयंभू रमण समुद्र। उसकी उपमा दी है यहाँ मोह के लिए, ये जो मोह है ये स्वयंभू रमण महासमुद्र के जैसा है, इसको तैर कर मैं प्राप्त करूंगा क्षीण मोह गुण स्थान, माने बारहवा गुण स्थान। बारहवें गुण स्थान तक आ गए और अंत समय में अब क्या होगा, पूर्ण स्वरूप वितराग होकर अपने ही निज में केवल ज्ञान रूपी निधान प्रकट करूंगा, वो अवसर कब आएगा? क्या उस क्षण की प्रतीक्षा है जब हम भगवान बनेंगे? हृदय पर हाथ रख करके सोचो, भगवान बनना चाहते हो क्या? यहाँ तो कहोगे आप अभी मेरे सामने, तो हाँ साहब भगवान बनना चाहते हैं। सोचो जरा, आपको रोजाना कितनी बार याद आती है भगवान बनने की? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का विकल्प दिन में कितनी बार आता है? अरे पंडित, दिन में कितनी बार ये पूछो, कितने दिन में आता है? सम्यक दर्शन के बारे में विचार कितने दिन में आता है, कब आता है? ऐसा तो नहीं है कि साल में जब कोई विद्वान आते हैं तब आता है, इसके अलावा नहीं आता है। विचार करना जरा उसके बारे में, ये सारी बातें विचार ही के लिए है, कब ऐसा अवसर आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? जब होऊंगा भाई अंतर निर्ग्रंथ में, जब पाऊंगा केवल ज्ञान में, जब पाऊंगा मोक्ष पर विजय, मोह पर विजय में, उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष दो अक्षरों से मिलकर के बना है, मोह और क्षय, मोह से तो मोह और क्षय से क्षय, मोक्ष मोह क्षय, उसी का नाम मोक्ष है। मोह के क्षय का नाम ही मोक्ष है। देखिए आप चार लाइनें और, दो मिनट में। चार घातिया कर्मों का क्षय हो जहां पर चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाए, हो भव तरु का बीज समूल विनाश जहां, संसार के बीज का समूल विनाश, माने संसार दशा सदा सदा के लिए चले गई, चार घातिया कर्मों का अभाव हो गया, समस्त कर्मों का क्षय हो गया, सकल ज्ञेय ज्ञाता दृष्टा मात्र हो, जगत के जितने भी ज्ञेय हैं, उन सब के अब ज्ञाता दृष्टा मात्र रह गए, सारे जगत के ज्ञेय मानो ज्ञेय दिखाई देते हों, जगत के पदार्थ दिखाई देते हों, और हम उनके ज्ञाता दृष्टा हैं, सिर्फ उनको जानने देखने वाले हैं। कृत कृत्य 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 प्रभु अनंत वीर्य प्रकाश, जब अनंत वीर्य का प्रकाश जब प्रकट हो गया है, अब वे ऐसे कृत कृत्य हो गए हैं कि अब करना कुछ भी बाकी नहीं। कृत माने कर लिया गया, कृत्य माने करने योग्य। कृत कृत्य करने योग्य जो कर लिया गया हो, जहाँ करने योग्य कार्य कर लिया जाता है, उसे कहते हैं सिद्ध अवस्था। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, कैसे बैठे हैं हमारे भगवान, देखो जरा मंदिर में जाकर के भगवान की मुद्रा देखोगे कैसे दिखाई देते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे भगवान, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से क्या होगा, कुछ करो। दुनिया में कहते हैं ये हाथ से हाथ धर के क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, तो पता है क्या कहता है भगवान, क्या कहते हैं भगवान, ये कहते हैं जो करना था सो काम कर लिया, पर में कुछ करते नहीं है और अपने में करने योग्य काम कर लिया, अब हाथ से हाथ धर के नहीं बैठे तो और कैसे बैठे बताओ, ऐसे हाथ से हाथ धर के बैठे भीतरागी हैं, न आशीर्वाद देते हैं, न भक्तों का भला करते हैं, न दुष्टों का संहार करते हैं। ये धर्म कैसा है वीतरागियों का धर्म, ये कैसी वीतरागता है, यहाँ भक्तों के प्रति भी राग नहीं है, मूर्ति तोड़ने वालों के प्रति भी द्वेष नहीं है, और मूर्ति बनाने वालों के प्रति भी राग नहीं है, ये कैसा धर्म होगा। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, अपराधी को शरण देने वाले भगवान भी अपराधी होते हैं, क्या भी होता है, जिसने अपराधी को शरण दी हो, जो अपराधी से मिला जुला हो, जिसके अपराधी से थोड़े बहुत भी लिंक हो, उस व्यक्ति को अपराधी करार घोषित कर दिया जाता है, सजा का हकदार हो जाता है, वो संजय दत्त का ही कुछ जेल भुगत रहा है अभी तक, क्या गलती है उसकी, यही तो है कि उसके संपर्क थे बस अपराधी के साथ में, और क्या है, उसने कोई अपराध थोड़ी ना किया, लेकिन तेरा संपर्क उनके साथ में है, तो जिन भगवान का संपर्क पापियों के साथ हो, जिन भगवान का संपर्क अपराधियों के साथ हो, और अपराधी की सजा को माफ कर दे, तो लोग उन भगवान के ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये रिश्वत खा गया भगवान, सुंदर के ज्ञाता दृष्टा भाव, प्रभु आप कृतकृत्य हो गए हैं, आपने करने योग्य काम कर लिया है, हे प्रभु अब आप नया क्या काम करेंगे, हे प्रभु भक्तों का भला करना ये आपका काम नहीं है, और भक्तों की भलाई के लिए भी जो काम आपको करना था वो अरहंत दशा में आपने उपदेश देकर के कर लिया, अब तो वो काम भी नहीं करते हो, ऐसा कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये अवसर कब आएगा, जब कोई काम करना बाकी नहीं रहेगा, लगता है कभी ऐसा दुनिया से थकान लगती है, सर दुखता है, टेंशन लगती है, ऐसा लगता है बहुत कर लिया अब कुछ नहीं किया जाता, ऐसा लगता है कि सब काम निपट जाएं, ये भगवान ये काम कब निपटेंगे, कभी इसकी शादी, कभी उसकी बर्थडे, कभी यहाँ पार्टी, कभी उनका मरण, कभी इनका ये, कभी यहाँ बनाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी अभी तबियत खराब, कभी डॉक्टर के, कभी यहाँ का अपॉइंटमेंट है, कहाँ कहाँ ये कब निपटेंगे ये सब काम, कभी लगता है ऐसा अंदर से, कभी मन करता है कृत कृत्य होने का, सब काम हो जाए और कोई काम नहीं रहे, ये ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ऐसा अवसर किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर जिस दिन में कृत कृत्य होकर के अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान के प्रकाश से सहित विचरण करूंगा। हम भावना बातें हैं कि हमारे जीवन में अल्पकाल में ऐसा अवसर प्रकट हो, अति शीघ्र हमारे जीवन में ऐसा अवसर प्रकट हो, सभी के जीवन में, बस इसी मंगल भावना से मैं बात कर रहा
हूँ। Yeah.